निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की।
हाँ, राठौर कैसेट के सुनने वाले हमारे श्रोता बंधुओं, आज हम ये पांडव वनवास की पावन गाथा आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने कई कार्यक्रमों में ये कहा है कि हमारा महाभारत का सीरियल आरंभ हो चुका है, कई कथाएं महाभारत की राठौर कैसेट के द्वारा आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं। तो श्रोता बंधुओं, आज हम महाभारत का ये पावन प्रसंग, पांडवों को वनवास जब हुआ तो वनवास के दौरान उन्होंने क्या किया, इस कथा को सुनाएं। उससे पहले देखिए, कोई भक्त प्रभु की वंदना कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम सुनने से पहले या हरि गाथा या सत्संग सुनने से पहले दो मिनट प्रभु में अपना ध्यान लीन कर देने से आत्मा पावन हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है। जैसे जब कोई शुभ कार्य करने के लिए हाथ पैर धोना आवश्यक माना गया है, उसी प्रकार से सत्संग रूपी गंगा के अंदर बहने से पहले हृदय में दो चार बार अपनी जिभ्या से प्रभु का नाम ले लेना एक आचमन का ही कार्य समझा गया है।
सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए।
सच्चिदानंद भगवान की। हाँ तो श्रोता बंधुओं, दुर्योधन की बहरी सभा में पांडवों का जो अपमान हो चुका है वो तो सभी जानते हैं। द्रौपदी चिरहरण के बाद ये निर्णय दिया गया कि पांडव वनवास जाएंगे। 12 बरस तक तो वनवास में रहेंगे और 13वां वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे, यानी छिपकर रहेंगे। और 13वें वर्ष अज्ञातवास में अगर उन्हें ढूंढ लिया गया तो फिर पुनः 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। आज इसी सजा को भुगतने के लिए बेचारे पांडव बन बन में भटकते घूम रहे हैं। सच कहते हैं बंधुओं, उस विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। क्या बेचारे उन सुकुमार नवल किशोरों को ये पता था कि एक दिन राज्य छोड़कर हमें वनवास में भ्रमण करना पड़ेगा। मेटे से मिटती नहीं भाग्य की लकीर रे, पता नहीं क्या हो जाए पल में तकदीर रे। मिटे से मिटती मिटे से मिटती नहीं भाग्य की लकीर रे, पता नहीं क्या हो जाए भाग्य की लकीर रे। भाग्य किस समय क्या करता है ये कोई नहीं जान सकता। आज बेचारे श्रवण को क्या मालूम था कि मैं आज दशरथ के बाणों से मर जाऊंगा। क्या राम को मालूम था कि मुझे राज्य की बजाय वनवास जाना पड़ेगा। आज बेचारे क्या पांडवों को मालूम है कि हमें वनवास जाना है। पता नहीं भूखे प्यासे मुनियों का भेष बनाए आज वन में भटकते घूम रहे हैं। इधर देखिए, एक रोज की व्यास बात है। व्यास देव यानी वेद व्यास जहां पर ये कुटिया बनाकर वन में रहते थे पांडव, वहां आ गए। पांचों भाइयों ने युधिष्ठिर समेत व्यास देव मुनि को प्रणाम किया और रो रो करके कहने लगे, कौन महाराज धर्मराज? आज व्यास देव से कि मुनिवर हम लोग क्या करें, कहां जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। दुर्योधन ने हमारा अपमान करके हमें वनवास भेज दिया है, हमारी समझ में नहीं आता, अब हम कैसे करें क्या करें। बस इतना नहीं पास में जोरण कर जय पाए, कहो मुनि कैसी करें, किस विधि मन समझाए। हमें इतनी ताकत भी नहीं है मुनिवर, हमें इतना बल नहीं है, हमारे पास इतना साधन नहीं है जो हम दुर्योधन से युद्ध करके जीतें। हे मुनिवर, आप तो ज्ञानवान हैं, ज्ञानी हैं, आप ही हमें समझाएं, हम क्या करें, कैसे जय पाएं, कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे अपनी प्रजा को न्याय दिलाएं। जिस समय महाराज युधिष्ठिर की बात सुनते हैं श्रोता बंधुओं, कौन? व्यासदेव। तो मुस्कराए और कहने लगे, क्या बचन श्रवण कर भूप को लेकर लंबी श्वास। व्यास देव कहने लगे हो न पुत्र उदास। व्यास देव कहने लगे बेटा युधिष्ठिर तुम उदास क्यों हो रहे हो, चिंतित क्यों हो रहे हो। तुम धर्म धुरन धर हो कर भी दुख है ये सम तो फरमाते। पापी सुख धर्मी दुख पाता ये व्यर्थ बात कहते जाते। सच ये है जो सुख मिलता है शुभ अशुभ कर्म का फल जानो। जो बोगे काटोगे वही इसमें न झूठ है अनुमानो। जो पूर्व जन्म में अति उत्तम कर्मों को करके आता है, जो पूर्व जन्म में अति उत्तम कर्मों को करके आता है वो पाप करे तो भी जग में फलता व फूलता जाता है। धन कुकर्म करके भी जो सुख पाता है नर राई ये उसके पूर्व सुकर्तों का उत्तम फल देता दिखलाई। आज कहने लगे व्यासदेव अरे ज्ञानी होकर अज्ञानियों जैसी बात क्यों करते हो धर्मराज। बार बार कहते हो हे प्रभु आज के युग में पापी दुष्कर्मी दुष्ट आदमी सुख उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो देखो धर्मराज मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है। तुम्हारी निगाह में दुर्योधन जो है पापी है दुष्कर्मी है, मगर ऐसा नहीं है। इस जन्म में तो पापी जरूर है लेकिन पिछले जन्म में वो बड़े अच्छे कर्म करके आया है, इसलिए उसको पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में दुष्कर्म करने से भी अच्छा सुख प्राप्त हो रहा है, अच्छा फल मिल रहा है। मगर इस जन्म में दुष्कर्म करने की वजह से ये सुख उसको अधिक दिन तक प्राप्त नहीं हो पाएगा, अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगा। बाकी एक बात मैं तुमको और बता दूं, भीम द्रोण कृप करण ये बेशक हैं रणधीर, इनसे लड़कर जीतना है अति टेढ़ी खीर। देखो एक बात और बता दें धर्मराज, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं, इनको जीत पाना कोई साधारण बात नहीं है। देखो तुम सत्यवादी हो, सच बोलने वाले हो, इसलिए मैं तुमको एक विद्या सिखा रहा हूं जिससे तुमको सारा राजपाट वापस मिल जाए, ऐसी मैं तुमको एक तरकीब बता रहा हूं। देखो धर्मराज ये तो निश्चित है, 13 वर्षों के बाद ये भारत जो है ना, भारत भूमि, ये युद्ध का मैदान बनेगी और इसमें वही आदमी जीत पाएंगे जिनकी भुजाओं में महान ताकत होगी, अद्भुत बल होगा। तो देखो, सामने लड़ने वाले बड़े बड़े वीर होंगे, महाभयंकर युद्ध छिड़ेगा और ऐसे लोगों से युद्ध छिड़ेगा जिनके पास बड़े बड़े दिव्य अस्त्र होंगे। ऐसे दिव्य अस्त्रों को, ऐसे युद्ध को वही संभाल पाएगा जिसके पास अपार बल होगा। इसलिए देखो, मेरा कहना यही है कि तुम लोग धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ। जैसे पानी आने से पहले चतुर लोग जो हैं ना, वो अपने अपने घरों का बचाव करने के लिए कोई पाल डाल लेता है, कोई सिरकियां डाल लेता है, कोई बरसाती डाल लेता है, कोई सीमेंट का प्लास्टर लगवा देता है। उसी प्रकार से ये तुम समझो कि आने वाले 13वें वर्ष के समय को निपटने के लिए तुम लोग अपना अपना बल बढ़ाओ, अपनी अपनी शक्तियां बढ़ाओ, अपनी अपनी ताकत बढ़ाओ। और एक काम करो, अपनी नैया का गिनो अर्जुन खेवन हार, सबकी रक्षा का तुरत दे दो इनको भार। अपना पूरा भार अपना मुखिया अर्जुन को मान लो और अर्जुन से कहो कि वो सारी विद्या ग्रहण करने के लिए उत्तर दिशा में जाएं। उत्तर दिशा में जाकर वो भगवान शिव को और इंद्र को प्रसन्न कर लें। जब शंकर को और शिव को प्रसन्न कर लेंगे, इंद्र को भी प्रसन्न कर लेंगे, तो उनको दिव्य अस्त्र मिल जाएंगे। और जब दिव्य अस्त्र प्राप्त हो जाएंगे तो फिर आप लोग युद्ध में विजेता हो जाएंगे। करके सारी विद्या ग्रहण ये उत्तर दिशा चले जावे, शिव और इंद्र को कर प्रसन्न, उनसे सब दिव्य अस्त्र पावे। हो गया यदि ये काम पूर्ण, निश्चय रण में जय पाओगे, लेकर अपना सब राजपाट सुख से जिंदगी बिताओगे। देखो, जब अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त हो जाएंगे, भगवान शंकर और इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, तो बस फिर तुम लोग विजयी हो जाओगे, जीत कर ये युद्ध, अपना राजपाट लेकर जीवन भर सुख उठाओगे। दिया फिर उपदेश कुछ मुनि ने अति सुख पाए, विदा हुए फिर हर्ष से इन्हें तो धीर बंधाए। कुछ ज्ञान दिया, धीरज बंधाया, उसके बाद व्यास देव तो वहां से चल दिए। और इधर अर्जुन को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अर्जुन भी चाहते थे हम कहीं जाएं, अपने परिवार के लिए कुछ बल एकत्र करें। भट झट से क्या किया, कवच पहरा, हथियार बांधे और वन में जाने की ठहराई अपने मन में। सबसे पहले गए, अपने भाइयों से विदा ली, उसके बाद जाकर कृष्णा से मिलते हैं, द्रौपदी से मिलते हैं, फिर सारे ब्राह्मणों को अपना शीश नवा करके, मन में प्रसन्न होकर के इंद्र और शिव के दर्शन की महान अभिलाषा लेकर अर्जुन चल देते हैं वहां से। एक एक वन को पार करते चले जा रहे हैं, गंधमादन गिर, बद्रीनाथ और अंत में इंद्रकील गिरी पर जो है इनके चरण पड़ते हैं अर्जुन के। यहाँ पर सघन झाड़ियां हैं, घनी झाड़ियां हैं, मगर उन घड़ी घनी झाड़ियों की चिंता भी न करके अर्जुन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इनके दृढ़ता को देख करके महाराज इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रोता बंधुओं, दृढ़ता इनकी देख कर इंद्र गए हरसाए, रास्ते में ही आतिके मुनि का भेष बनाए। रास्ते में ही मिल गए, मुनि का भेष बनाया रामशरण भैया और महात्मा का भेष बनाकर आए, अर्जुन को बीच में मिले और कहते क्या है। आए जैसे ही पार्थ निकट, आए जैसे ही पार्थ निकट, बोले मुस्का कर सुरराई, हे वीर तुम्हारा, हे वीर तुम्हारा धैर्य देख, हे वीर तुम्हारा धैर्य देख, हे वीर तुम्हारा धैर्य देख, अति प्रसन्नता हमको छाई। हम ही हैं, हम ही हैं वो तो देवराज सुरपति, बोला बोलो बोलो, हम ही हैं देवराज सुरपति, बोलो बेटा क्यों आए हो, इस वस्तु की है तो चाह, तुम्हें इतना तो कष्ट उठाए हो। अरे मुनि का भेष बनाकर आए, कहने लगे बेटा अर्जुन, तुम्हारे धैर्य तुम्हारे बल को देखकर मैं अपार प्रसन्न हूं। बेटा इतना दुख उठाने के लिए वन में क्यों आए हो, क्या बात है हमें बताओ। अर्जुन ने इंद्र को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु हम आपसे क्या बताएं, हे भगवान कौरवों ने हम पर बड़ा अत्याचार किया है, हमारा सब राज्यपाट कपट से छीन लिया, हम लोग विवश हो गए, लाचार हो गए, इसलिए हम आपके पास आए हैं, जानते हैं हम क्या चाहते हैं। अस्तु मैं चाहता हूं तुमसे दिव्य शस्त्रों की सी छापा कर, उधार राज का करूं प्रभु रिपुओं को यमपुर पहुंचा कर, हां मुझसे लखी ना जाती है विपदा मेरे भ्राताओं की, दिन रात निकलती रहती है, दिन रात निकलती रहती है उनके मुख से ध्वनि आहों की, हे मुनिवर हे इंद्रदेव जी हम क्या बताएं, हमारा सभी राजपाट छीन लिया गया है, सभी कुछ हमारा विनाश हो गया है, हम जब अपने भाइयों को देखते हैं, अपनी माता को देखते हैं, हमारा हृदय भर आता है, कि हम उनकी कैसे मदद करें, कैसे अपना राजपाट वापस लें।
इसीलिए हे भगवान, मैं आपके पास कुछ दिव्य अस्त्र सीखने आया हूँ। आपके दिव्य अस्त्र हमें चाहिए जिससे हम अपने दुश्मनों से लड़ सकें। इसलिए कृपा करके स्वामी दिव्य अस्त्र मुझे आप सिखलाएं, किस प्रकार से उन्हें चलाया जाता है, ये सारी कलाएं आप हमको बताएं।
परीक्षार्थ कहने लगे सुरपति मन मुस्काए,
अर्जुन क्यों निज चित्त को शस्त्रों में ललचाए। अरे अर्जुन कैसा पागल है तू, अरे नादान,
लोग स्वर्ग पाने के लिए संसारी इच्छा को त्याग देते हैं। लोग पूजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें स्वर्ग मिले। और तू मेरे पास खड़ा होकर भी स्वर्ग नहीं मांग रहा है, मांग रहा है अस्त्र। अरे स्वर्ग को त्याग कर,
अय अर्जुन,
स्वर्ग को परित्याग करके शस्त्रों की कामना क्यों कर रहा है? अरे चल मेरे साथ, स्वर्ग का आनंद भोग, स्वर्ग का सुख भोग।
आज अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जरा विचार करें, जब तक मेरे सभी भाई संकट में हैं, जब तक मेरी माँ दुखों में है, तब तक मैं स्वर्ग को कैसे सोच सकता हूं?
बोले अर्जुन, हे देवराज, नहीं स्वर्ग सुख मंजूर मुझे, सबसे पहले भ्राताओं का करना है संकट दूर मुझे। वे तो वन में रह सुख भोगे और मैं स्वर्गीय सुख पाऊं, ये मेरा धर्म नहीं है के कर्तव्य से अपने गिर जाऊं। बस इसीलिए करता हूं विनय भगवान शस्त्रों के पाने की, बिन उनका दुख मेटे मेरी नहीं चाह स्वर्ग में जाने की।
मेरे भाई दुख पावे, मेरी माता दुख उठावे, ऐसे स्वर्ग को मैं लेकर क्या करूंगा? मेरी कामना है कि सबसे पहले मेरे भाई सुखी हो जाएं, मेरी माता सुखी हो जाए, मेरी प्रजा सुखी हो जाए।
आज जब ये दृढ़ता देखी अर्जुन की, तो इंद्र प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तू चिंता मत कर अर्जुन, मैं तुझको सारे शस्त्र प्रदान करूंगा, लेकिन देख भाई, शस्त्र सीखने के लिए तुझको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। और स्वर्ग में बेटा वही व्यक्ति जा सकता है जो जब तक सब प्रकार से उसके पाप दूर ना हो जाएं, और सारे पाप बेटा जब ही दूर तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम भगवान शिव का दर्शन कर लो। जब शिव का दर्शन कर लोगे तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और एक बात है बेटा, देखो जब आगे युद्ध होगा तो उसमें बड़े बड़े वीर योद्धा आएंगे, तो देखिए उसमें अस्त्र शस्त्र भी बड़े बड़े होना चाहिए। देखो भगवान शिव के पास एक पशुपत नाम का दिव्य अस्त्र ऐसा है कि अगर वो तुम्हें अर्जुन प्राप्त हो जाए तो फिर संसार में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं। तो इसलिए एक तो अपने पाप को दूर करने के लिए, स्वर्ग में जाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, और पशुपत के लिए बेटा तुम सबसे पहले भगवान शिव का आराधन करो, भगवान शिव की पूजा करो, बस तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाकर सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। बेटा याद रखो, जाओ अपनी दृढ़ता पूर्वक जाओ, भगवान शिव का दर्शन करो, भगवान शिव जब प्रसन्न होंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे तो क्या होगा,